मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 19 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च की क्लासेस में अपना दाखिला लिया है। इन दोस्त का नाम है प्रिंस कुमार, आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। तो प्रिंस आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों आज मैं स्टूडेंट्स से कुछ बातें करने जा रहा हूं और यहां मैं जो स्टूडेंट से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उन स्टूडेंट से जो यहां अभी 3 मार्च से शुरू होने वाली क्लासेस के लिए आने वाले हैं या उन स्टूडेंट से जो यहां क्लासेस करके जा चुके हैं, नहीं, यह हर एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं या यूं कह लीजिए कि उनसे निवेदन कर रहा हूं, उनको एक सजेशन दे रहा हूं या उनसे अपील कर रहा हूं। मित्रों मेरा सजेशन ये है कि देखिए यूपीएससी यानी कि आईएएस के जो एग्जाम होते हैं उनके इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, राइट। आपको मालूम है कि जो इंटरव्यू होता है वो दिल्ली में ही होता है, यूपीएससी के ऑफिस में होता है, संघ लोक सेवा आयोग के, और यह ऑफिस धौलपुर रोड पर स्थित है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके लिए जो दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में आप सब रहते हैं, आपके लिए ये अद्भुत अवसर है कि आप सब वहां जाएं, पूरा दिन बिताएं और जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देकर के निकल रहे हैं उनसे आप सब मिलें और बाकायदे बातचीत करें। और मैं रिपीट करता हूं कि पूरा दिन वहां गुजारें। मान करके चलें कि आप आज पूरे दिन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में गलत फहमी होती है कि अगर हम बैठ करके पढ़ नहीं रहे हैं, किताबों के कुछ पन्ने हमने पलट नहीं लिए हैं, तो यार पूरा दिन खराब हो गया। मित्रों मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू की इससे बेहतर तैयारी आपकी कुछ हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि पूरे दिन, सुबह जब से इंटरव्यू शुरू होता है से लेकर के शाम जब तक इंटरव्यू समाप्त नहीं हो जाते, बीच बीच में जैसे स्टूडेंट्स जिसके भी इंटरव्यू खत्म होते हैं वो बाहर आते हैं, आप देखते रहिए, उनका इंतजार करते रहिए और जैसे ही वो स्टूडेंट बाहर आते हैं पूरी विनम्रता के साथ आप उनसे बातचीत कीजिए, उनका परिचय पूछिए, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन किए गए थे वो पूछिए, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपने क्या जवाब दिया, इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहा, और फिर आप ये भी पूछिए कि मेंस की तैयारी उन्होंने कैसे की थी, प्री की तैयारी उन्होंने कैसे की थी। दोस्तों सच पूछे तो इससे आपको जितना लाभ मिलेगा उतना लाभ आपको उस तरीके से और कहीं भी नहीं मिल सकता। आपके अंदर का जो भय है, चाहे वो इंटरव्यू को लेकर के हो, इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के हो, मेंस की तैयारी को लेकर के हो, देखेंगे कि धीरे 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 आपका भय समाप्त होता जा रहा है और आपको लगेगा कि नहीं ये सब एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही हो रही है, इसके लिए कोई बहुत विशिष्ट, बहुत विचित्र या अद्भुत या विलक्षण योग्यता की जरूरत नहीं है। हाँ, एक सामान्य से थोड़े से बेहतर योग्यता की जरूरत जरूर है। तो आपके अंदर एक बहुत अलग किस्म का आत्मविश्वास जागृत होगा कि नहीं मैं भी इसे कर सकता हूं, और फिर आपको मार्ग भी दिखाई देने लगेगा कि नहीं मुझे इस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए हो सकता है कि आपको तुरंत इस तरह का कोई एहसास न हो कि आपको रास्ता दिखाई देने लगा या आपके दिमाग में कोई चीज कौंध गई कि अरे मुझे तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है कि उसमें कुछ वक्त लगे, लेकिन एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि जो एक दिन आपने यूपीएससी के आसपास गुजारे हैं वह आपकी जिंदगी के लिए कितना मूल्यवान दिन रहा है। मित्रों मैं दिल्ली में रहने वाले सभी स्टूडेंट से अपील करूंगा कि उन्हें एक दिन का समय धौलपुर हाउस के आसपास गुजारना चाहिए, बहुत खूबसूरत वो जगह है, दोनों तरफ मतलब फुटपाथ के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत पेड़ों की छाया आपको मिलेगी, आपको लगेगा जैसे कि आप किसी उद्यान में आए हुए, साफ सुथरी जगह है, वहां आपको खाने पीने की भी चीजें मिलती रहती हैं, बिकती रहती हैं, किताब वाले भी कुछ बैठते रहते हैं, आप बड़े आराम से थोड़ी देर के लेके किताबें पलट सकते हैं और आपको बड़ा सुकून लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों आप सब ऐसा करें। और एक अपील और है कि आप में से जिन्हें भी लगता है कि नहीं उनके दिमाग में चीजें स्पष्ट हो गई हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं वे प्रश्न दूसरों तक भी पहुंचने चाहिए। मतलब आपने जो लाभ लिया है उस लाभ का कुछ हिस्सा दूसरों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए तैयार हूं मित्रों, आपका वाहक बनने के लिए। आप मुझे प्रश्नों की सूची भेज सकते हैं या उनसे बातचीत जो आपकी हुई है उसके आधार पर आप अपने अनुभव मुझे लिख करके भेज सकते हैं और मैं फिर अपने डेली ऑडियो लेक्चर में बकायदे आपके नाम को शामिल करते हुए उसे फिर अपने सभी प्रिय श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। ये वायदा मेरा आप सबसे रहा। और यहां तक कि अगर आप दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, गाजियाबाद में रह रहे हैं, मेरठ में रह रहे हैं, हरियाणा के आसपास के एरिया में रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा दूर भी रह रहे हैं तो कुछ नहीं है, आप ट्रेन पकड़िए सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाइए और शाम के बाद फिर ट्रेन पकड़िए वापस चले जाइए। लेकिन ये कीजिए मित्रों, आपको ऐसा करना चाहिए। अभी जबकि मैं बात आपसे ये कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको मेरी बात के वजन का एहसास न हो रहा हो कि यार चलो इससे क्या फायदा हो जाएगा, लेकिन आप करके देखें। जब आप करके देखेंगे, अनुभव के स्तर पर जब आप गुजरेंगे, तभी आपको शायद मेरी इस सलाह की अहमियत का थोड़ा बहुत एहसास हो सके। तो दोस्तों, ये बात मुझे आज आप सबसे करनी थी। मुख्य विषय के तहत मैं आपसे संस्थाओं की जो विश्वसनीयता होती, क्रेडिबिलिटी होती है, या कह लीजिए कि जो सैंक्टिटी होती है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन थोड़ी सी बात क्या, मैं अब सीधे अपने मुख्य विषय पर ही आता हूं, क्योंकि आज न्यूज के तहत मैं किसी भी टॉपिक पर आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूं। और उसका कारण यह नहीं कि मेरी तैयारी नहीं है, बल्कि कारण उसका यह है कि कोई न्यूज ऐसी नहीं है जिस पर बात की जा सके। तो आइए हम लोग सीधे मुख्य विषय पर आते हैं और वह है संस्थाओं की विश्वसनीयता। मित्रों, इस विषय का चयन मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में, आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में हिंदी के में एक लेख छपा है सोम शेखर सुंदरेशन का, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, उसी को मैंने आधार बनाया है। और चूंकि अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मुझे लगा कि ठीक है चलिए एक आधार के रूप में मैं आपको प्रेस क्लिपिंग्स उपलब्ध करा दूंगा और दूसरे आधार के रूप में मैं अपने ढंग से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। संस्थाओं की विश्वसनीयता, देखिए यहां जब हम संस्थाओं की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कहां की संस्थाएं और कौन सी संस्थाएं, कहां की संस्थाएं। तो सीधी सी बात है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की संस्थाएं, एक लोकतांत्रिक देश की संस्थाएं, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो भारत की संस्थाएं। अब किस तरह की संस्थाएं, तो उसमें सीधी सी बात है कि हम यहां जो बात करने जा रहे हैं वो सरकारी तंत्र की संस्थाओं की हम बात करेंगे, निजी संस्थाओं की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, निजी संस्थाएं भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उनकी भी अपनी सैंक्टिटी होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे अभी बातचीत के दायरे में नहीं है। लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनकी विश्वसनीयता का क्या महत्व है, जिसे मैंने शब्द इंग्लिश में मैं कहना चाहूंगा सैंक्टिटी, पवित्रता शब्द शायद और ज्यादा बड़ा और अच्छा मौजू शब्द है, संस्थाओं की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। मित्रों, जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की संस्थाएं आती हैं। नंबर वन, वे संस्थाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा है कि आप इस तरह की संस्थाएं बनाइए। नो डाउट कि उस दृष्टि से लोकसभा और राज्यसभा भी संस्थाएं हैं। फिर हम देखते हैं, ये तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्थाएं हैं। दूसरी वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान के तहत ही बनी हुई हैं, लेकिन जब हम सरकार चुनकर भेज देते हैं, सरकार बन जाती है, तो सरकार फिर उन संस्थाओं में नियुक्ति करती है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा में व्यक्ति सीधे नियुक्त करते हैं, निर्वाचित करते हैं कह लीजिए, उसको नियुक्ति आप कह सकते हैं, हम तो निर्वाचित करते हैं, नियुक्ति का अधिकार हमें नहीं है, और ये कह लीजिए कि निर्वाचन के माध्यम से ही उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन जब एक बार सरकार बन जाती है तो फिर वह दोनों तरह की संस्थाओं में नियुक्तियां करती है, जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं या सांविधिक संस्थाएं हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, संवैधानिक संस्थाएं वे हैं फ्रेंड्स जिनका उल्लेख बाकायदे संविधान में किया गया है। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बकायदे संविधान में है कि आपको बनाना ही है। चुनाव आयोग, बकायदे संविधान में है कि आपको बनाना ही है। अभी मैं जिस संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा था, संविधान में दिया हुआ है कि आपको इस तरह के संस्था का गठन करना है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जो संविधान में ऑलरेडी निहित है। दूसरी तरह की वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान में नहीं है, लेकिन जरूरत के अनुसार सरकार उन संस्थाओं का गठन करती है और बकायदे उनमें नियुक्तियां भी करती है, जिसे आप कह लीजिए कि स्टेचुररी बॉडी, या यूं कह लीजिए कि सांविधिक संस्था, जो विधि के तहत बनाई जाती है, एक्ट के तहत बनाई जाती है। कुछ ऐसा भी होता है जिसके लिए एक्ट नहीं, आप सीधे कैबिनेट से भी बना लेते हैं नीति आयोग की तरह, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। मूलतः हम दो तरह की संस्थाओं पर बात कर रहे हैं, सांविधिक, विधिक, विधिक एक्ट के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि आप आरबीआई के गवर्नर की बात ले लीजिए, एक्ट के तहत आप बनाते हैं। मानव अधिकार आयोग की बात ले लीजिए, वो आप एक्ट के तहत बनाते हैं। संविधान में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि मानव अधिकार आयोग इस तरह का बनना ही चाहिए। आप इनको सूचना आयोग को ले लीजिए, संविधान में थोड़ी है कि सूचना आयोग इस तरह का होना चाहिए। तो आपने एक्ट बनाया और उसके तहत फिर आप सूचना आयोग का आपने गठन किया और फिर सूचना आयुक्त की आप नियुक्ति करते हैं। तो ये दो तरह की संस्थाएं होती हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो सरकार है वो निर्वाचित होती है और वो पार्टी पॉलिटिक्स के तहत निर्वाचित होती है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए जितने भी संभावित उपाय, शक्तियां हो सकती हैं, उनका वो उपयोग करते हैं। नो डाउट कि वैधानिक, संवैधानिक दायरे में, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करेंगे, बकायदे उसके भी नियम कानून है, प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व एक्ट है, बकायदे हमारा संविधान है, उसके लिए भी नियम कानून बने हुए हैं। चुनाव आयोग उन सब की देखरेख करता है और उन सीमाओं के भीतर, उन मर्यादाओं के तहत वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने के बाद वो सरकार बनाते हैं और वो सर्वोच्च होते हैं। याद रखिए कि सरकार सर्वोच्च है, यानी कि हमारी संसद सर्वोच्च है। अब ये जो चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधि हैं, इनके बारे में कोई उस तरह की शैक्षणिक या प्रोफेशनल योग्यता की बात नहीं कही गई है, जबकि बाकी संस्थाओं में जो लोग नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए योग्यता की बात है। तो इनमें कॉमन सेंस बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, अब ये है कि ये आएंगे और सरकार बनाएंगे और इसके बाद देश के लिए नीतियों का निर्धारण करेंगे और जो प्रशासन है उसका मार्गदर्शन करेंगे। अब सवाल यह है कि दो तथ्य बिल्कुल अलग अलग हो गए। एक तरफ संस्थाएं हो गई जिनमें योग्यता के मापदंड को फुलफिल करते हुए लोग बैठे हुए हैं, और दूसरा वो है सरकार है जिनमें योग्यता के कोई मापदंड नहीं है। लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि सब अयोग्य लोग हैं, वो समझना बहुत बड़ी भूल होगी, लेकिन उस तरह के मापदंड नहीं है। जो मापदंड है जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत वो फुलफिल करते हैं और वो सामान्य मापदंड है। तो ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक हित अलग हो जाता है, आप देखिए, और संस्थागत दायित्व तो अलग हो जाते हैं। राजनीतिक हित अलग और संस्थागत दायित्व तो अलग। लोकतंत्र में यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है संस्थाओं का कि वो अपने दायित्वों को फुलफिल करते रहे, निभाते रहे। अगर ये संस्थाएं अपने दायित्व को निभाना बंद कर देंगी, कम कर देंगी, तो मान, या यूं कह लीजिए कि जो राजनीतिक दल हैं, यदि वे इन संस्थाओं का राजनीतिककरण कर देंगे, तो ये मान करके चलिए कि लोकतंत्र की सफलता के सामने ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। जैसे मित्रों, कुछ पदों के बारे में आप सोचिए। राज्यपाल, अब जब देश के राज्यपालों को देखेंगे तो राज्यपाल के लिए कोई निर्धारित मापदंड ये नहीं है कि वो पॉलिटिक्स के ही व्यक्ति होंगे, राजनीतिक व्यक्ति होंगे, नहीं, किसी को भी बना सकती है सरकार। लेकिन ज्यादातर जो लोग बनते हैं वो राजनीतिक दल के लोग होते हैं, राजनेता होते हैं और राज्यपाल बना के भेजे जाते हैं। अब वो किसी पार्टी में है, बकायदे उन पार्टी के सिद्धांतों को मान रहे हैं, उसमें उन्होंने काम किया है, और सच पूछे तो उसी के आधार पर जब उनकी सरकार केंद्र में होती है तो उनको नियुक्ति भी मिलती है। लेकिन राज्यपाल जब व्यक्ति के रूप में था तब वो किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन अब वो जब राज्यपाल बन गया है तो राज्यपाल नामक संस्था का हेड है। तो अब उससे अपेक्षा की जाती है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करे। स्पीकर देख लीजिए, स्पीकर तो सीधे सीधे लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, मैं या कह लीजिए कि बहुमत दल का नेता नहीं कहना चाहिए, जो बहुमत दल होता है, जिस दल का बहुमत होता है उसी पार्टी का व्यक्ति होता है स्पीकर। अब उसको संसद को चलाना है और वहां सभी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। अब आप देखिए कि जब वो स्पीकर बन रहा था तब वो किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा था लोकसभा में, बकायदे वो भी उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया है। लेकिन जब वो स्पीकर बन जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि अब वे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करेंगे, लोकसभा में तटस्थ रहकर उसका संचालन करेंगे। तो दोस्तों ये चैलेंज लगभग लगभग सभी संस्थाओं के साथ है, और जहां संस्थाएं या कह लीजिए अपने कर्तव्यों से विचलित होती हैं या राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वैसे ही संस्थाओं का पतन होना शुरू हो जाता है, जिसके बारे में अभी आप खासकर सीबीआई को लेकर के कितनी ज्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, विवाद की स्थिति बनी हुई, किस तरह से कोर्ट में मामले चल रहे हैं वो आप हम सबके सामने है। उसका कारण चाहे जो भी हो, चाहे सीबीआई ने अपने आप को कमजोर कर लिया हो, राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, या जो भी रीजन हो, तो वो एक प्रमाण है कि किस तरह से बहुत आवश्यक है लोकतांत्रिक प्रणाली में कि संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता को कायम रखें, और जब वो अपनी विश्वसनीयता खो देती हैं तो आप देखिए कि किस तरह के संघर्ष पैदा होते हैं। सीबीआई को सीधे सीधे वेस्ट बंगाल मानने से इनकार कर रहा है, तेलंगाना मानने से, आपके आंध्र प्रदेश मानने से इनकार कर रहा है, ये स्थितियां आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बाद में संभव हुआ तो हम कभी इस पर और बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि इस पर आप सबको तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रविन्द्र कुमार वर्मा बस्ती उत्तर प्रदेश से, अतिन दुबे, अंकित कुमार सचान कानपुर उत्तर प्रदेश से, एजाज अहमद, शिवदयाल कुमार बौरई बिहार से, राजा कुमार दिल्ली से, और प्रतिभा रेवाड़ी से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।